प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल के बारे में भी देंगे आपको जानकारी और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज चूंकि पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण के प्रति हम सभी के उत्तरदायित्वों के निर्वहन और जागरूकता का दिन है, तो इस पर विशेष बात करेंगे डेटलाइन के सेगमेंट में। आज के अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जागृति शर्मा, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की सरकार गठन को लेकर नई दिल्ली में बैठक चल रही है।
INDIA block leaders also meeting the national capital this evening to take stock of Lok Sabha poll results.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की।
ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक resigns following defeat of his party in assembly elections.
देश में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान।
And in T20 Cricket World Cup, India to take on Ireland in New York this evening. And now, Jagriti, is time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the World Environment Day. Today is the World Environment Day. The day is observed across the globe to reinforce and sustain awareness around environmental action. The Industrial Revolution, growing urbanization and population, as we know, have led to the steady disintegration of our natural world. As such, a major initiative of this day is to encourage people to live sustainable lifestyles. And the United Nations Environment Programme, UNEP, is the primary agency that is behind this celebration. Through campaigns, events and initiatives, World Environment Day inspires individuals and communities to make changes, fostering a sense of urgency in addressing environmental challenges for a sustainable future.
जी हाँ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवन शैली के लिए इनके गलत उपयोग से पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, और दूषित पर्यावरण उन घटकों को भी प्रभावित करता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का अर्थ है संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश जिसमें हम रहते हैं, इसमें हमारे चारों ओर के सभी जीवित और निर्जीव तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु। पर्यावरण के घटक परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जब इनमें कहीं पर भी किसी भी तरह की विसंगति आती है, किसी भी तरह का प्रदूषण होता है, तो मानव जीवन ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगता है।
दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज लैंड रेस्टोरेशन, desertification and drought resilience. All over the world, ecosystems are threatened, from forests and dry lands to farmlands and lakes. Natural spaces on which humanity's existence depends are reaching a tipping point, and according to the UN convention, up to 40% of the planet's land is degraded, directly affecting half of the world's population. The number and duration of droughts has increased by 29% since 2000 without urgent action. Droughts may affect over 3/4 of the world's population by 2050. Land restoration is a key pillar of the UN Decade on Ecosystem Restoration, a rallying call for the protection and revival of ecosystems all around the world, which is critical to achieve the Sustainable Development Goals. This is why World Environment Day 2024 focuses on land restoration, halting desertification and building drought resilience under the slogan Our Land, Our Future, We Are hashtag Generation Restoration. We cannot turn back time, but we can grow forests, revive water sources, and bring back soils. We are the generation that can make peace with land.
जी हाँ, और हम अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाकर भी अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, अपने संसाधनों का संरक्षण करके और पर्यावरण के अनुकूल जितने भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। इससे पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है, चाहे वो पेड़ लगाना हो, कचरा कम करना हो, पानी का बचाना हो, क्योंकि गर्मी के समय और जब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में इस समय पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, इनको हम बेहतर इस्तेमाल करके बचाएं तो आगे का जो भविष्य है, हमारी भविष्य की पीढ़ी है, उनके लिए हम एक बेहतर पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। और अगर बात पर्यावरण दिवस की करें तो इसे मनाने की नींव वर्ष 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया और हर साल इस दिन को मनाने का ऐलान भी किया। दरअसल पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यह सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर नामित किया, और इसके बाद से हर साल 5 जून को ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और जैसा भी अभिषेक ने बात की आपने कि इस दिन के लिए एक विशेष थीम होती है, जैसे पिछले साल की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा प्रदूषक तत्व है। आप देखिए कि कितनी भी कोशिशें की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
आई थिंक रिसाइकल, इफ यू रिसाइकल इट, वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इजंट इट?
बिल्कुल। और इस साल की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इस थीम का फोकस हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। और अब हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं उनके पास क्या खास है आज के लिए। सबसे पहले हम चल रहे हैं शानदार गोवा की ओर।
यस, एंड गोवा इज नोन फॉर इट्स फेस्टिविटीज अलोंग विद यूनिक नेचुरल एंड कल्चरल ब्यूटी एंड अलोंग विद इफी पर्पल फेस्ट सनबर्न। वन ऑफ देम इज अ स्टेट गवर्नमेंट्स फेस्टिवल, इज द गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2024। It was organized by the State Department of Tourism from May 24th to May 26th, 2024. Held at the Saligao football ground, the three-day event drew large crowds of locals as well as tourists. We have a report from a Goa correspondent, Tushar Jadhav.
The Goa Heritage Festival 2024 was aimed to celebrate and showcase Goa's diverse cultural heritage, providing a rich experience that immersed attendees in the state's tradition through the various artistic expressions. Visitors had the opportunity to explore an array of stalls that highlighted Goan craftsmanship, featured intricate handmade items and traditional art forms. The Goan Heritage Festival represented a splendid fusion of the tradition and creativity, with the every performance capturing the vibrant spirit of the state of Goa. The festival celebrated the timeless beauty of Goan culture, from the elegant movement of traditional dances to delicious flavors of a Goan authentic cuisine. The festival also featured a vibrant literary and visual art scenes, with the bookstalls and photo gallery displaying the Goa's artistic heritage. The Goa Heritage Festival 2024 celebrated the state's vibrant cultural heritage and fostered the sense of a community among the residents and visitors.
The inaugural day of Goa Heritage Festival 2024 showcased captivating performances by the renowned band Sky High and Pure Magic. Attendees, both local and tourists, enjoyed a traditional fashion show and the enchanting dances by the Kanta Gaude group, known for their stunning traditional attire and mesmerizing performances. Day 2 continued to thrill the audience with an exciting lineup of live music, headlined by Goa's pride Hema Setdesai. Dynamic acts by Lynx and Tidal Wave offered a mix of contemporary sounds and Goan musical traditions, captivating the crowd.
The Goa Heritage Festival 2020 2024 concluded on a high note on the day 3 with the performance by the 24K India, Truly Yours and Archie's, leaving the attendees with an unforgettable music experience. Throughout the event, the visitors enjoyed a range of cultural activities including the traditional dances, mimicry and comedy acts. Such festivals are definitely working as an encouragement to the all citizens and state for the conservation of our heritage. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
और गोवा से अब हम चलते हैं कोलकाता की ओर, जहां पर बिड़ला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम ने अपनी परिवहन गैलरी में कोलकाता मेट्रो के क्रमिक विकास को प्रदर्शित किया है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट सुनते हैं।
In order to recognize Kolkata Metro's contribution towards the socio-economic development of Kolkata and the adjoining areas, Birla Industrial and Technological Museum, BITM, the country's oldest government-owned science and technological museum, has showcased the gradual evolution of the first metro railway system in the country, the Kolkata Metro, in its transport gallery. This newly revamped gallery was opened on 18th of May 2024 as a part of the International Museum Day celebration. In this transport gallery, with the help of a diorama, the progress of human civilization since the invention of the wheel to today's electric vehicle has been depicted in an attractive storytelling format. The museum building in South Kolkata was once the property of the famous Tagore family and later to industrialist G.D. Birla, who donated the mansion to CSIR in 1959. Here, visitors will be able to view a 3D model of the Kolkata metro system running under the River Hooghly. Various rare historical photographs and memorabilia of Kolkata Metro have also found their place in the gallery, which also briefs visitors about different metro railway systems around the world. The visit down the memory lane will be an added attraction in this museum. The futuristic transport gallery has all the ingredients to turn it into a crowd puller. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
Now we have a report from a Chennai correspondent on an interesting research work on common minerals such as river, sand, ruby, aluminium, which are very hard and can be broken into nano-sized particles in milliseconds by charged tiny water droplets or micro-droplets. We have more from a correspondent, Shesh Prayadipam.
The IIT Madras researchers have shown that common minerals such as river sand, ruby and aluminium, which are very hard, can be broken into nano-sized particles in milliseconds by charged tiny water droplets or micro-droplets. The researchers have observed nanoparticles form following the infusion of particles into a micro-droplets, collected the formed nanoparticles and characterized them with advanced methods. This weathering process, which in natural environmental conditions would take centuries to happen, could be important in the study of origin of the life. The micro droplet showers from clouds in the form of rain falling on earth may be of importance to the chemical and biological evolution of the planet. In natural setting, atmospheric water droplets such as clouds and fog, which have charged ions which can disintegrate minerals and make them into a fresh surface where different reactions may be happen to form new molecules. Professor Talapil Pradeep of chemistry department said that micro droplets are known to enhance chemical reactions and as a result, new chemical bonds form. He said that this was a way to convert sand to soil. The rapid weathering process may be important for soil formation, particularly in the presence of charged aerosols in the atmosphere. Soil forms through gradual weathering of rocks, a process that takes 200 to 400 years to produce 1 centimeter of soil comprising different size particles. Nanoparticles of minerals like silica are crucial for the growth of crops like rice and wheat. This is Prayadeeswaran, Akashwani, Chennai.
चेन्नई के बाद अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी की ओर, जहां असम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या और राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय उद्यान के 50 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब इतना रेवेन्यू वहां पर कलेक्ट हुआ है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अमीनुल हक की रिपोर्ट।
The UNESCO World Heritage Site, Kaziranga National Park and Tiger Reserve, is known for its breathtaking landscape, rich biodiversity and iconic inhabitants like the one-horned rhinoceros, has emerged as a top tourist destination for families and wildlife visitors. The national park sees a record footfall in the last financial year and generated highest ever revenue since its inception in 1974. The park came officially established in 1905. The famed national park has also broken all-time record in the 2023-24 tourism year. Last year, over 327,000 tourists visited, and of whom of nearly 14,000 were foreign tourists. The revenue collected by the park authorities from tourists was over 8 crore 81 lakh rupees. Innovative initiatives operationalized during that year, such as boat safaris for dolphin watching and the introduction of new safari circuits like Panpur and Burasapuri, jeep and cycling circuit attracted more tourists to this World Heritage Site. Aminul Hafizuddin, Akashvani News, Guwahati.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Maulvi Ahmadullah Shah, who participated in the First War of Independence in 1857. A resident of Faizabad, Uttar Pradesh, Shah played a prominent part in organizing the independence activists and fought against the British forces at Faizabad, Lucknow, and several other places in the Awadh region.
The independence activists inflicted heavy losses on the British army, and the company Raj declared a reward of 50,000 rupees for his capture. Repulsed from Shahjahanpur, he appeared on the 5th of June, 1858, near Awadh Rohilkhand border. He was shot dead near Awadh Rohilkhand border by the British Allied forces on the 5th of June, 1858. The brutal British forces cut off his head and sent it to the British officials at Shahjahanpur for exhibiting it at the Kotwali. Even his body was burnt and the ashes were thrown into the river. Pays tributes to the great freedom fighter, Maulvi Ahmadullah Shah.
We pay tributes to Manipuri freedom fighter Thoding, who was martyred on 5th of June 1875. A resident of village Rakmanpara, the Garo Hills, Meghalaya, Thoding took part in the last Garo resistance movement of 1875 against the British Army.
Along with other Garo warriors, fought continuously for 3 weeks to resist the British occupation, but was captured by the English army from the battlefield. Thoding was tried and sentenced to death. The brave Manipuri fighter was executed at Tura on the 5th of June, 1875. We salute the great son of the soil. We also remember revolutionary freedom fighter Harendra Lal Chakraborty, who was martyred on the 5th of June, 1934. A resident of Chittagong, now in Bangladesh, Harendra Lal was involved in the Chittagong youth movement and participated in revolutionary activities.
Harendra Lal was involved in a bomb attack on Peter Cleary, the superintendent of police of Chittagong at the Paltan Maidan. When the attack failed and two young revolutionaries were killed in the firing by the orderlies of the officer, Harendranath, along with Krishna Kumar Chaudhary, attempted to throw multiple bombs at him. However, the bombs failed to explode. The duo escaped the firing from the orderlies, but were apprehended later.
Harendra Lal was tried by the special tribunal and sentenced to death. The sentence was confirmed by the High Court on the 18th of April, 1934, and Harendra Lal was executed on the 5th of June, 1934, in Medinipur Central Jail. Salutes the great revolutionary freedom fighter.
We also remember revolutionary freedom fighter Mrinal Kanti Roy Chaudhary, who died on the 5th of June, 1932. A resident of Joshur Town, Kolkata, Mrinal was born in 1903 to Durga Roy Chaudhary. He was a member of the Anushilan Samiti and was arrested for revolutionary activities on 10th of October, 1930. He died during internment on 5th of June, 1932 in the Devli Camp Jail. We salute the great martyr.
Now And in some business news today, Indian benchmark indices Sensex closed 2,303.19 points, 3.20% higher at 74,382.24, while Nifty settled 735.85 points, or 3.36% higher at 22,620.35 points. Sensex opened 954.88 points, or 1.32% higher at 73,033.90, while Nifty inched 243.80 points, or 1.11% higher at 22,128.30.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और कुछ खेल की गतिविधियों पर भी बात कर लेते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं 2020 क्रिकेट विश्व कप की, जहां भारतीय टीम आज अपना अभियान शुरू करेगी. न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा. भारतीय समयानुसार मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा. कल खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हराया. इससे पहले ब्रिजटाउन के किंगस्टन ओवल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.
एंड इन टेनिस, इंडिया सुमित नागल हैव एडवांस्ड टू द सेकंड राउंड ऑफ द हेल ब्रॉनर Necker Cup Challenger Tournament in Germany. The ace Indian player today defeated former world number 60 Nicholas Beslashvili of Georgia 6-2, 1-6, 6-3 in the round of 32. Nagel, the third seeded, will take on Xavier Branco Cosano of Spain in the pre-quarters tomorrow.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों की बात करने का जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की आजादी से पहले के प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. मास्टर मदन के बारे में कम लोग जानते हैं. हालांकि मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में एक किशोर के रूप में ख्याति प्राप्त करके मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 1940 के दशक में दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसा माना जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए ऊंची रकम दी जाती थी. मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल के बेहद करीब थे. इस कारण उन्होंने कई गीत भी गाए, हालांकि लेकिन केवल 8 गानों की रिकॉर्डिंग ही हो पाई जो आज उपलब्ध है. इनमें से सार्वजनिक रूप से केवल 2 ही गाने हैं जो अभी मिल पाते हैं. उनमें से एक गीत हम यहां पर श्रोताओं को सुनाएंगे.
And Ray Douglas Bradbury passed away on this day in 2012. He was an American author and screenwriter, one of the most celebrated 20th century American writers. He worked in a variety of genres including fantasy, science fiction, horror, mystery and realistic fiction. Bradbury is best known for his novel Fahrenheit 451 and his short story collections The Martian Chronicles, The Illustrated Man and The October Country.
और हिंदी ललित निबंध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले साहित्यकार कुबेरनाथ राय की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की पहचान और व्याख्या की. अपने जीवनकाल में उन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे और कुबेरनाथ राय की अब तक 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है. कामधेनु निबंध संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला महत्वपूर्ण मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनकी रचनाएं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की गईं.
William Sidney Potter passed away on this day in 1910, better known by his pen name O. Henry. He was an American writer known primarily for his short stories, though he also wrote poetry and non-fiction. His works include The Gift of the Magi, The Duplicity of Hargraves, and The Ransom of the Red Chief, as well as the novel Cabbages and Kings. Potter's stories are known for the naturalist observations, witty narration, and surprise endings.
और मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की आज जयंती है। उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास की और उसके बाद अध्यापन की योग्यता प्राप्त की। इसके बाद दो वर्ष तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनूदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
Mark Wahlberg was born on this day in 1971, formerly known by his stage name Marky Mark. He's an American actor. His work as a leading man spans the comedy, drama and action genres. He has received multiple accolades, including a BAFTA award and nominations for 2 Academy Awards, 3 Golden Globe Awards, 9 Primetime Emmy Awards and 3 Screen Actors Guild Awards. Wahlberg made his screen debut in Renaissance Man in 1994 and had his first starring role in Fear 1996. He received critical praise for his performance as Dick Diggler in Boogie Nights.
भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता नारायण मल्हार जोशी की आज जयंती है। उन्होंने समाज सेवा की और महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना भी करवाई। उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों की स्थापना भी करवाई थी।
पीटर लुइस किंगस्टन वेंस III वाज बोर्न ऑन दिस डे 1979। ही इज एन अमेरिकन म्यूजिशियन हु इज द बेसिस्ट एंड लिरिसिस्ट फॉर द रॉक बैंड फॉल आउट बॉय। Before the band's formation in 2001, Wentz was a fixture of the Chicago hardcore scene and was the lead singer and songwriter for Arma Angelus, a metalcore band. During Fall Out Boy's Haters from 2009 to 2012, Wentz formed the experimental electropop and dubstep group Blackguards. Let's listen in to his hit track, Summer Days.
Driving in the drop top with the top down for your kitchen lanes, girl. Pull up to the red light, looking right in the limit, get your name, girl. Tell me where you're from, what you do, what you like, let me pick your brain, girl. And tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. Well, let me show you around, let me check it out, let you we can have some fun, girl. Cause we can do it fast.
भारत के प्रसिद्ध टेनिस कोच और खिलाड़ी रहे रमेश कृष्णन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1970 के दशक में इन्होंने जूनियर खिलाड़ी के तौर पर विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था। रमेश कृष्णन को खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री से 1998 में सम्मानित किया गया।
Kenneth Bruce Gorelick was born on this day in 1956, known professionally as Kenny G. He's an American smooth jazz saxophonist, composer, and producer. His 1986 album Duo Tones brought him commercial success. Kenny G is one of the best-selling artists of all time, with global sales totaling more than 75 million records. Let's listen in to his hit composition, Loving You. Yes, and Ajinkya Madhukar Rahane was born on this day in 1988. He is an Indian cricketer and former captain and former vice captain of the Indian team in Test cricket, who has played for Indian cricket team in all formats as a batsman. He currently captains Mumbai in Ranji Trophy and plays for Chennai Super Kings in the IPL. Rahane plays primarily as a middle order batsman in Test format and as a top order batsman in the white ball forms of the game. As the captain of the national team, India has only lost one match under his captaincy.
और फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महेश भट्ट के छोटे भाई के तौर पर की, लेकिन समय के साथ उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। फिल्म निर्माता ने अपनी शानदार और बेहतरीन फिल्मों के लिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने फिल्मी करियर के दौरान कई हिट फिल्में दी, जिनमें आशिकी, राज, सड़क, जन्नत जैसी फिल्में शामिल हैं।
सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए।
Mukesh Bhatt collaborated with Gulshan Kumar to produce the love story Aashiqui in 1990, starring debutants Rahul Roy and Anu Agarwal. The film was directed by his brother Mahesh Bhatt.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो जागृति शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति.
नमस्कार.